ओम शांति। आज के संध्या सत्र में सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम शुरू करें, हम सभी 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे।
सब दे प्यार, सब चाहे तो सब के लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
शांति। तो आज देखते ही देखते हमारे यूथ का जो कॉन्फ्रेंस है उसका 3रे दिन का 2री पहर शुरू हो गई है, दोपहर की वेला। और बहुत अच्छा सत्र है अभी, पेपर प्रेजेंटेशन। पिछले दिन भी हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे महानुभाव आकर यहाँ पर अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार देकर गए हैं। और आज भी हम ऐसे ही कुछ महान हस्ती द्वारा उनके मन के विचार आध्यात्मिक विषय पर, जो हमें न केवल प्रेरणा देंगे लेकिन इंस्पायर करेंगे उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करने के लिए। तो आज की मंच को शोभा देने के लिए मैं निवेदन करूंगा, इनवाइट करूंगा स्टेज पर आदरणीय निकुंज परमार जी को, सीए देविका टंडन बहन को और फलक शाह भाई को। तो ये हमारे आदरणीय 3 महाभूति आज पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत सुंदर इनके विषय है, लेकिन इससे पहले इन्हें दे जाए मैं निवेदन करूंगा हमारी बहनों से कि हमारे 3 अतिथियों का बैच से स्वागत करें और हम सब भी कर्तव्य ध्वनि द्वारा तालियों से इनका स्वागत करेंगे। 7 आदरणीय गुप्ता जी जो इसके हमारे जज रहेंगे, उनका तो परिचय आपको सबको कल मिला ही होगा, लेकिन वो भी सामने से हमारे 3 पैनलिस्ट्स को जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं उनका जज की सेवा वो देंगे। तो आज के जो पेपर प्रेजेंटर के विषय भी बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे अपने डेली लाइफ में, चाहे प्रोफेशन हो, पर्सनल हो, करियर से रिलेटेड हो, कैसे हम अडॉप्ट करें अलग अलग प्रैक्टिसेस को। तो हमारे 3 महाभावी का स्वागत हो रहा है। एक बार दोबारा हम कर्तव्य ध्वनि द्वारा ईश्वरीय महफिल में इन 3 का स्वागत करेंगे। एक चीज बता दूं कि बहुत सारे नॉमिनेशन आए थे, काफी नॉमिनेशंस आए थे लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को सेलेक्ट किया गया समय को देखते हुए, तो ये सिलेक्शन है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पेपर प्रेजेंटर आदरणीय निकुंज परमार जी से। तो इनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। वैसे इन्होंने अपनी जो करियर है उसकी शुरुआत की है इंजीनियरिंग की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट की। इंजीनियरिंग के साथ साथ इनका जो पैशन था वो फिलॉसफी में था, इसलिए इन्होंने विशेष रूप से बीए किया गुजरात यूनिवर्सिटी से, अपने वहां पर बैचलर्स कंप्लीट किया और विशेष रूप से फिलॉसफी में इन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा। इनकी जर्नी यही नहीं सीमित रही, इन्होंने कहा नहीं बीए नहीं हम आगे एमए करेंगे और मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। और एमए के साथ साथ बहुत सारे जो अलग अलग कोर्सेस होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे एनईटी हो, सीईटी हो, एमसीटी हो, ऐसे कई सारे इन्होंने एग्जाम्स को भी क्लियर किया। 7 से अधिक रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस इनके पब्लिश हुए हैं और वर्तमान समय आप पीएचडी स्कॉलर हो, फिलॉसफी के अंदर ही आप अपनी पीएचडी को अर्जित कर रहे हो। आपका जो आज का विषय है वो है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एंड एथिकल वैल्यूज एट वर्कप्लेस। तो सभी पैनलिस्ट को एक बार बता दे कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा अपना पेपर प्रेजेंटेशन करने। 8 मिनट होते ही एक बेल रिमाइंडर के रूप में दिया जाएगा, जो एक इंडिकेशन होगा कि अगले 2 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय निकुंज जी से कि वो अपना पेपर प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा पेपर का विषय वैल्यूज एट वर्क। हम सब वर्क के लिए तो कहीं ना कहीं जाते ही है, तो मैंने आज ये ट्राई किया है कि हमारे वर्क में हम वैल्यूज को कैसे ला सके। वैल्यूज को लाना यानी स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ज्यादातर क्या है कि हमने मंदिर तक ही सीमित कर दिया है। तो हमारा मेन टारगेट आज का क्या है कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एंड इथिकल वैल्यूज इन द वर्क प्लेस, कि वैल्यूज को हम कैसे ला सकते हैं। तो आज के मेरे टॉपिक की जो मतलब बेसिक बताऊं तो एकदम सिंपल है कि हम सब जॉब करने के लिए तो जाएंगे, हम उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारा फर्स्ट है। अभी समस्या क्या आती है कि हमारे जॉब करने जाते हैं ना तब कुछ ना कुछ तो समस्या आती है, वहां पे बहुत सारे ऐसे क्राइसिस होते हैं। अभी जो क्राइसिस है उसकी वजह से हम अपनी वैल्यूज को डेवलप नहीं कर पाते, अपनी वैल्यूज को हम ग्रोथ ही नहीं होती। अब उस टाइम पर हम क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो है। हम अगर वहां पर क्राइसिस इतना चलता रहेगा, हम सब जॉब करने जाएंगे वहां पर क्राइसिस ही रहेगा, तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे। तो आज मैं आप सबको एक, हम 2 दिन से यहां पे देख रहे हैं कि एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल के बारे में बताऊंगा कि जो आप जानेंगे और अप्लाई करेंगे तो आप सब लोग भी अपने वर्क प्लेस पे वैल्यूज ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले मेन प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहां पर ऐसे कौन लोग हैं कि जो जॉब करते हैं। हाँ, तो मेजोरिटी लोग, सारे लोग जॉब करते हैं। तो अभी आप सब लोग अपने माइंड में जॉब प्लेस के एटमोस्फियर में जो भी क्वेश्चन खड़े होते हैं वो आप सब अपने दिमाग में रखें कि हैव यू एवर फेस एन इथिकल डायलेमा एट वर्क वेर रूल्स डिड नॉट हेल्प, कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होते हैं, तो वो अपने माइंड में अभी सोच के रखें। और आप सबको भी क्या क्या डिफिकल्टीज आती है वो वैल्यूज को मेंटेन करने में, वो भी आप अपने दिमाग में रखें। तो अभी मैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है, तो वो आप सब देखना। सबसे पहला इथिकल क्राइसिस इन वर्क प्लेस, तो ये हमारी जो नर्स है वो काम करती है तो वहां पे 48% उनको हैरेसमेंट, इनसिविलिटी, बुलिंग, इन सब से गुजरना पड़ रहा है। फिर दूसरा है कि इथिकल क्राइसिस की इंडिया में 5 में से जो 4 लोग है वो लोग वैसा ही बता रहे हैं कि हम जब जॉब करते अगर मुझे मेरे काम का जॉब नहीं मिला तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फिर तीसरा है कि 59% लोग कि जॉब से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहे थे, तो इसका मेन रीजन ये है कि हम सब अपनी वैल्यूज को डेवलप नहीं कर पा रहे, अपने वैल्यूज को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी तो कर रहे लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी या तो हमारे घर या तो मंदिर या वहां तक ही हमारी सीमित रहती है। तो ऐसे देखे अगर कि कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, डेटा प्राइवेसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऐसे नेपोटिज्म, हॉनेस्टी, और हमारे गुजरात में तो क्या है कि मतलब ऐसा बोलते कि धन दो छे तो चाले, बराबर है। हमारे वहां पे तो ऐसा बोलते कि वहां पर तो वैल्यूज की जरूरत क्या है, कि वहां पर तो प्रोफेशनल, अगर हम प्रोफेशनल है तो फिर प्रोफेशनल ही रहने का। पर आज हम देखेंगे कि वैल्यूज का भी क्या वैल्यू, क्या इंपोर्टेंस है। फिर इथिकल वैल्यूज अगर होगी तो हम वहां पे कैसा एटमोस्फियर हम क्रिएट कर सकेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि गाइडिंग डिसीजन, अगर हमारे एटमोस्फियर में अगर गाइडिंग डिसीजन अच्छा होगा तो हम एक अच्छा सा एनवायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे, फिर बिल्डिंग ट्रस्ट निर्माण कर सकेंगे, फिर हम शेपिंग एक कल्चर अच्छा सा डेवलप कर सकेंगे और लॉन्ग टर्म हमको सक्सेस मिलेगा। इथिकल वैल्यूज का सबसे जो मेन बेनिफिट है ना वो यही है कि हमको लॉन्ग टर्म उससे सक्सेस मिलता है। फिर अभी ये सब हमने प्रॉब्लम तो देखा, प्रॉब्लम देखा, अभी उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो मेरा पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है तो उसके साथ मैंने कनेक्ट किया है। तो उसके लिए ये सोक्रेटिस का कोट है कि अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर हम सब अपनी लाइफ को एग्जामाइन करते तभी हम अच्छे से जी सकते, विदाउट एग्जामाइन हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो मैं टूल का नाम दे रहा हूं मतलब वो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग है। ये सब टूल शायद आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, या तो फिर मतलब ऐसे हम अप्लाई तो करते ही है। आप सबने कृष्णा और अर्जुन का श्रीमद भगवद गीता के बारे में तो देखा होगा कि श्रीमद भगवद गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन का, अगर फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बोले तो उन्होंने क्या किया कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग किया है, क्योंकि अर्जुन भी क्या है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, उसको न तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम था न तो कोई मेंटली प्रॉब्लम था, पर कुछ तो प्रॉब्लम था। तो वो प्रॉब्लम कृष्ण ने कैसे सॉल्व किया, तो उसके लिए उन्होंने फिलोसॉफिकल काउंसलिंग कि उसको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए, बहुत सारे बातों में ऐसे विजडम दिया, और वो देके उसको युद्ध करने के लिए जो धर्म के लिए जो जरूरी है वो करने के लिए उसको प्रेरित किया। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इट्स कोर, इट्स अबाउट यूजिंग ह्यूमैनिटी ट्रेडिशन टू ओल्डेस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रिंग क्लैरिटी पर्पज एंड इंटीग्रिटी टू अवर वर्क लाइफ। हमारे यहां पर अगर देखें ना तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग बहुत एंशियंट से यहां पर चल रहा है। आप सबको भी पता होगा कि हमारे वहां पे जो उपनिषद से, तो उपनिषद में भी ये यम और नचिकेता का है। यम और नचिकेता में क्या भी क्या है कि उन्होंने संवाद के माध्यम से जो फिलोसॉफी है, जो विजडम था वो निकाला था। फिर हमारे वहां पे याज्ञवल्क और गार्गी मैत्रेयी है, तो उन्होंने भी वैसे ही ट्राई किया था। तो हमारे यहाँ पे ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग का ट्रेडिशन बहुत एंशियंट से चल रहा है। अभी फिलोसॉफिकल काउंसलिंग को अपनी लैंग्वेज में समझना है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी प्रॉब्लम्स न तो फिजिकल होते हैं न तो मेंटली होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम हमारी थॉट प्रोसेस रिलेटेड होते हैं, हमारी बिलीफ से होते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट इन थॉट से होते हैं। अगर वैसे कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको फिलोसॉफिकल काउंसलिंग हेल्प कर सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम के लिए हम अगर फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम एक ही घर में रहते हैं, दो भाई एक ही घर में रहते हैं, अभी दोनों के बीच में कुछ भी ना तो फिजिकल मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है। तो वैसे जो प्रॉब्लम है, जो हमारी थॉट प्रोसेस और वर्ल्ड व्यू रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वैसे प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देखें ना कि ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी आपने सुना होगा, तो ये इससे पूरा डिफरेंट है। तो ये कैसे डिफरेंट है, फर्स्ट तो दोनों का फोकस एकदम टोटल डिफरेंट है। एक का सिर्फ फोकस क्या है, तो मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन फिलोसॉफी का प्रॉब्लम क्या है कि आपको विजडम देना है, आपको जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो आपको डेवलप करना है। फिर दोनों की मेथोडोलॉजी भी टोटली डिफरेंट है, फिर दोनों का रिलेशनशिप भी अलग है और रेगुलेशन भी अलग है। और फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में हम बहुत सारी ऐसी मेथड्स का यूज करते हैं, तो उसमें से मैं सोक्रेटिक्स डायलॉग और एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी, एक सोक्रेटिक्स डायलॉग मेथड है कि उसमें हमको क्या करना है, जो भी समस्या आती है उसको हमको वाई क्वेश्चन पूछना है कि हमारा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि हमारा पर्पस क्या है, तो मैं अगर दूंगा कि मेरा पर्पस पैसे कमाना है तो पैसे क्यों कमाना है, वाई, अगर पैसे कमा के ये किया तो वाई, जो भी क्वेश्चन जब तक हमें सही आंसर नहीं मिल जाता तब तक वाई क्वेश्चन पूछते ही रहना है। तो ये एक मैंने आपको एक सिर्फ सोक्रेटिक्स डायलॉग के बारे में बताया कि एक ऐसी मेथड है। अभी हमारा आज का मेन टारगेट तो क्या है कि हमारे वर्क प्लेस में हमको ये फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग ले जाना है, तो हमारा मेन टारगेट तो आज यही रहेगा कि इसको हम कैसे ले जाए। अगर वर्क प्लेस में ले जाएंगे तो उसमें हमको एक्टिव क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा और एग्जामाइन वैल्यूज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सबको अभी क्या करना है कि हमारा सब इतना सुन के हम सबको एक ही माइंड में आता है कि ये सब हम करेंगे कैसे, तो फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग यूज एज स्पिरिचुअल किट, फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग फोकस ऑन एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग इज द इंजन द ड्राइव्स द रिफ्लेक्शन। अभी मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट जो 3-6 कॉन्सेप्ट है इथिकल कॉन्सेप्ट जो हमारी वर्क प्लेस में हम अप्लाई करेंगे तो हमारे वर्क प्लेस में एक अच्छा सा एटमोस्फियर क्रिएट खड़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में हम ऐसा करेंगे कि हम अपने कैरेक्टर के ऊपर ध्यान रखेंगे और ऑनेस्टी और करेज से उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है डियोन्टोलॉजी के हमको जो कार्य का रिजल्ट मिला है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हम कार्य कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। थर्ड है यूटिलिटरिज्म की उपयोगितावाद के कार्य को जो रिजल्ट मिलता है उसके ऊपर नहीं, जो मैक्सिमम जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का अच्छा होता है वो कार्य अच्छा है। फिर इथिक्स ऑफ केयर है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिक मीनिंग, तो उसमें व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ है उसका अस्तित्व क्या है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर ये फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग में हम इंडिविजुअल ग्रुप डायलॉग्स इथिक्स इससे हम अपने जीवन में ऐसे ला सकते हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, तो इससे हम इंडिविजुअल तो अच्छा हम करेंगे साथ में अपनी टीम्स को भी अच्छा डेवलप करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा करेंगे। और लास्ट में मेरा मेन कंक्लूजन यही है कि जो हमने 6 कॉन्सेप्ट देखा वो कॉन्सेप्ट को अगर हम डीप में समझेंगे फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग से तो एक एथिकल क्लैरिटी ऑथेंटिक वर्क क्रिएट कर सकेंगे और हमारे वर्क प्लेस को इंटीग्रिटी मीनिंग और ह्यूमन फ्लोरिशिंग कर सकेंगे। और लास्ट में इतना करके हम जो हमारा मेन है कि हम ब्रह्मास्मि और आत्मदीपो भव वो हमको लास्ट में जागरूक करना है तो उतना हम कर सकेंगे। और मेरा मतलब मेन जो लास्ट 3 पॉइंट है कि यूज योर स्पिरिचुअल टूल किट एवरीवेयर, अप्लाई योर स्पिरिचुअल टूल्स इन एवरी सिचुएशन, कैरी एंड यूज योर स्पिरिचुअल टूल किट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल टूल किट है उसको हम फिलोसॉफिकल काउंसिलिंग के रूप में लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से भाई साहब ने बताया कि किस प्रकार फिलोसॉफिकल काउंसलिंग हमें मदद करेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो सभी पैनलिस्ट से निवेदन है कि अपनी जो बात है वो 10 मिनट में रखें और हम कोशिश करेंगे, अभी भी 8 मिनट्स में हमने प्ले किया था ला, बट इनकेस टाइम का हमें थोड़ा मर्यादा रखनी है। अभी आ रही आवाज? ओके, तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट से, देविका बहन जी से। इनका संक्षिप्त में परिचय क्या देवे, बहुत मल्टीपल पर्सनैलिटी है इनका, जो अभी हम बायोडाटा देख रहे थे तो वैसे ये प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी से भी कई वर्षों से आप जुड़े हुए हो, वैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। इसी के साथ साथ आपने, आप ट्रेंड कथक डांसर हो, ट्रेंड कथक डांसर के साथ साथ सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर, बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपने लिए हैं। और आध्यात्मिक जगत में यदि देखा जाए तो आपने विपसना का कोर्स किया है, इनर इंजीनियरिंग किया है, राजयोग का कोर्स सीखा है, स्पिरिचुअल हीलिंग कई सारी चीजें किए हैं। वर्तमान समय लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यहाँ पर आप लोकल चैप्टर पे आप काउंसलिंग की सेवाएं दे रहे हो, और ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है विहासा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच। इनफैक्ट वहीं पे हमारी इनसे मुलाकात भी हुई थी, वहां पर आप फैसिलिटेटर भी हो, तो आपका स्वागत है। और आपका जो विषय है आज का वो है लिट लाइट विद इन द इनर लाइट एट वर्क। थैंक यू।
ओम शांति। व्हेन यू हियर वैल्यूज एट वर्क यू माइट पिक्चर एन एचआर वर्कशॉप विद ऑफवर्ड आइस ब्रेकर्स, बट टुडे वी आर गोइंग डीपर into the world of inner compass, not the compass that pirates use. Think of your conscious as if it has a LinkedIn profile with skill sets as honesty, compassion, courage, integrity, endorsed by your mom, grandpa, or maybe your boss. No, I'm not speaking of the kind of values you see in discount sales or real estate brochures, but the thing that tells you not to reply to all with sarcasm. Today, we are talking about values at workplace. In the corporate jungle, values are not just feel-good ideas, but they are like a spiritual Wi-Fi, which is invisible yet strong. जब वाईफाई अच्छा चल रहा होता है तो लगता है कि लाइफ में सब मस्त है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डू यू नो व्हाट दिस इज? यू मे से इट्स अ बी एंड लीफ, सो इट डिनोट्स बिलीफ। इट्स जस्ट नॉट अबाउट बीइंग अ बिजी बी, बट चेकिंग व्हाट एग्जैक्टली आर योर बिलीफ्स। And values are like baby toys. Babies have it figured out early. They spit out what's toxic and hug what feels safe. Maybe they were the natural, original, spiritual consultants. As the one beloved Almighty has given me the badge of creativity in this workshop also, so I'll present my presentation in a creative way. In the form of stories, I conducted interviews of 12 professionals and I'll be presenting their real life case studies in the form of stories. So going forward with the first one, this is the story of a chartered accountant, C.S. Sahil. He was asked to manipulate a financial report. In audits dark, where numbers twist, Sahil felt a foggy mist. A bribe disguised as bonus due, but inner voice said this won't do. He chose the loss, upheld the law, no shortcuts in the truth he saw. Clients changed, his fame grew slow, but peace within began to glow. Sahil could have cooked the books, but instead he chose to serve raw honesty, extra spicy for his client. Now as CA Day and Doctor's Day is on 1st of July, so my next case study is of a doctor, Dr. Aditi. So they say doctors treat bodies, but Aditi, in a high-pressure ICU, let a patient's family in for one last prayer. She healed with medicine and with meaning. That's compassion with a stethoscope. So she treated a whole family's faith without charging GST on the side. The third case study is of a lawyer, Shiv. He was asked to defend a corrupt client, but he refused the case and upheld his inner court. He respected his name, that is Shiv, Satyam Shivam Sundaram. Satya hi Shiv hai, Shiv hi Sundar hai. Shiv didn't bend the truth, even when the truth came wrapped in gold and carried a VIP briefcase. He was offered a bribe to adjust testimony, but he refused. Because not all wins are victories, some losses सेव योर सोल। शिप से चलते हैं हम कैलाश पर्वत की ओर, तो हमारे जो स्टार्टअप के फाउंडर हैं वो है कैलाश। उन्होंने उन्हें इन्वेस्टर्स ने बोला कोविड के दौरान कि व्हेन हिज स्टार्टअप फेज लॉसेस ही वाज टोल्ड टू फायर हाफ ऑफ हिज टीम, बट इंस्टेड ही टुक अ सैलरी कट एंड केप्ट एवरीवन एम्प्लॉयड। कंपैशन डिडंट कॉस्ट हिम हिज कंपनी, इट मल्टीप्लाइड इट्स लॉयल्टी। His investors wanted layoffs, but Kailash responded with, let's lay off our greed first. Investors stormed with profit cries, cut your team or watch it die. But Kailash saw beyond the chart and trusted bonds built from the heart. He kept his crew, reworked his pace and found new hands who shared his grace. For startups built on human trust outlast the ones fueled just by lust. Moving on to a teacher, Dr. Deepti. She caught a student cheating and said, let me mark your conscience, not just your paper. She gave him a second chance. Instead of punishment, she invited him for a reflection session and transformed the student. Now that student is a mentor to juniors. Forgiveness and trust taught him what fear couldn't. So our next case study is of a journalist, Astit. He was threatened for exposing a political scandal, but he published the story with grace. Because when truth flows from pen to page, no force can erase it. They tried to bribe his silence, but his pen shook a system because he wrote not just for headlines, but for conscience. Our next slide is on an intern, Ankita. She was blamed without fault, but she stood up and said, excuse me, I may be an intern, but my spine is not on probation. She was falsely accused of an error, but she calmly presented evidence to clear her name. She taught everyone that dignity is not about designation. It's about how we carry our values. Moving on to the next one. It's story of an engineer. It's about responsibility. She was asked to compromise on safety materials, but she redesigned ethically and avoided future collapses. Because she showed that strong structures rise from stronger values. Our next case study is about a fashion designer. They told her to Photoshop scars. She replied, I'm a designer, not a liar. Shaheen's brand campaign featured real people with real faces. She reminded us that authenticity does not need filters, it needs courage. Our next case study is of a banker, Kamal. He looked at the bribe and said, I prefer my coffee black, but my character spotless. Our last case study is of NHR. She had two departments who were fighting over credit. She calmed the chaos and with a tea circle and transparent dialogue. She reminded us that harmony is not absence of conflict, it's the art of connection. Two teams, one fight. HR entered with a smile and said, tea first, drama later. So these weren't just decisions, they were quiet revolutions at the office water cooler. Each of these stories shows that spiritual values don't demand a halo. They just ask for honesty, courage and compassion, because real leadership doesn't shout, it shines. Spirituality at work is not about preaching, it's about pausing before reacting, choosing dignity over ego, choosing clarity over comfort. Thanks for lending me your ears. I promise to return it now spiritually sanitized and values verified. If even one value today lights a corner of your cubicle or your conscience, then this time together was worth every second. Thank you so much.
बहुत बहुत धन्यवाद श्री देविका जी, बहुत बेहतरीन वैसे आपने प्रेजेंट किया. अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट पेपर प्रेजेंटर आदरणीय फलक शाह भाई. फलक शाह हमारे यूथ विंग के बहुत एक्टिव मेंबर हैं. यहाँ पर जो भी आयोजन आप देख रहे हो इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भाई साहब का भी है. वैसे बाय प्रोफेशन आप एआई ऑफिसर हो. हम आज देखते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ट्रेंड है, तो भाई साहब ने उसी के अंदर महारत हासिल की है और इनकी जो क्रिएटिव माइंड है अलग प्रकार से किस प्रकार मशीन लर्निंग लैंग्वेज को हम अडॉप्ट करें अलग अलग तरीके से, इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वो पिछले 10 साल से दे रहे हैं जब से एआई की शुरुआत हुई है. और आप भी कई प्रकार के प्रोग्राम्स रिसर्च प्रेजेंटेशन न केवल भारत बट विदेश में भी आपने दिए हैं और आपके कंट्रीब्यूशन से आपको जो प्रेसिडेंट का गोल्डन अवार्ड है ADACT के अंदर तहत आपको वो भी प्राप्त हुआ है. तो ऐसे प्रतिभा धनी के आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय प्रतिष्ठा. और आपका विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोर वैल्यूज फ्रॉम वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू कॉरपोरेट्स. ओम शांति.
ओम शांति. तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने ये अटेम्प्ट किया है कि जो भी हम वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जिस संस्था में आप आए हैं वो भी जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका पूरा ऑपरेशंस जो है वो स्वयं सेवकों से या वॉलंटियर्स से चलता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से क्या ऐसी कोर वैल्यूज है जो हम कॉरपोरेट्स में भी अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कॉरपोरेट को भी बेनिफिट रहे. तो ये ओवरऑल फ्लो है. पहले हम वैल्यूज का महत्व समझेंगे, उसके अराउंड जो रिसर्च हुआ है तो इसमें मैंने 15 से 20 ऐसे रिसर्च पेपर्स का स्टडी करके उसका सारांश यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिसमें जो वैल्यूज से चलने वाले वर्क प्लेस है उनका एक कंपैरिजन किया हुआ है. तो उसके कुछ स्टैट्स देखेंगे और फिर हमने 5 वैल्यूज कोर वैल्यूज लिए हैं जो वो वर्क प्लेस में अडॉप्ट कर सकते. सो बेसिकली कोर वैल्यूज क्या है? एक आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आप डिसाइड करते हैं एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम लाइफ में इसको फॉलो करेंगे. तो जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कोर वैल्यूज पे बिल्ट है उनका जो एक डायरेक्शन रहता है वो काफी फोकस्ड रहता है कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें ऐसा कोई कोर वैल्यूज नहीं है. तो जैसे मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ उसका ही एक दृष्टांत दूं, तो उस कंपनी में एक भी कोर वैल्यू है कि हम काम की जो क्वालिटी है उसको हम हमेशा मेंटेन रखेंगे रिगार्डलेस कि हम हमारा स्लो ग्रोथ हो या फास्ट ग्रोथ हो, रेवेन्यू बढ़े या नहीं. और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये है कि मैंने जो 10 वर्षों में देखा है कि हम जब ज्वाइन किया तब 6 लोग थे, आज कंपनी का साइज ऑलरेडी 250 है विदाउट पुटिंग अ सिंगल पेनी वर्थ ऑफ एफर्ट इन टू मार्केटिंग. उन्होंने कोई भी मार्केटिंग में अपना एक पैसा भी खर्च नहीं किया तब भी कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है. तो जो कोर वैल्यू है, कोर बिलीफ सिस्टम है, वो जब भी कोई कॉर्पोरेट्स है वो फॉलो करते हैं तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है. तो पीछे हम देखते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स. जैसे आज कंपनीज में हम देखेंगे तो कंपनीज काफी खर्च करते हैं जब कोई एम्प्लॉई उनको छोड़ के जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए. आईटी में तो ये और भी कॉमन है और कंपनीज में भी है. और उसके सामने ये देखा गया है कि जो कंपनीज काफी एक्टिविटीज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को एंगेज रखने के लिए, उनके कोर फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, तो उन कंपनीज में जो कंपनी को छोड़ के जाने वाले लोग हैं उनका रेशियो काफी कम रहता है और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जैसे आगे भी हमारे प्रेजेंटर्स ने बताया कि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट फाइनेंशियल बेनिफिट और जो एम्प्लॉयज है वो रिटेन होने का भी बेनिफिट कंपनी को मिलता है. दूसरा फाइनेंशियल ग्रोथ, तो ऑफ कोर्स जो कंपनीज जिनमें एम्प्लॉयज डेडिकेटेड होंगे तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी काफी सारा मिलता है। काफी सारी स्टडीज हुए हैं इस डायरेक्शन में, उनके कुछ स्टैटिस्टिक्स रखे हैं। जो जो कंपनीज ने ऐसा अटेम्प्ट किया है कि हम एक कोर वैल्यू को फॉलो करेंगे, हमारे वर्कर्स को अपस्किल करेंगे, उनके लिए एफर्ट्स डालेंगे, तो उनमें फाइनेंशियली भी सेल्स में भी उनको ग्रोथ मिला है। तीसरा है इनोवेशन। तो आज के समय में ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इनोवेशन में भी जब आपका वर्कफोर्स डेडिकेटेड है, पूरी एफर्ट लगाता है कंपनी के लिए, तो वो नया नए खोज भी करता है और उसका भी बेनिफिट जैसे देखा गया काफी ऑर्गेनाइजेशंस में कंपैरिजन हुआ, तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसमें भी काफी कंपनीज को बेनिफिट हुआ बिकॉज ऑफ पुटिंग देयर कोर वैल्यूज अप फ्रंट, या जिनका स्ट्रांग वर्क कल्चर था। अभी हम देखेंगे पांच कोर वैल्यूज और ये पांचों लिए गए हैं पांच वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन से। वो ये पांच है, शायद आप सभी फेमिलियर होंगे ऑल टुगेदर। पहला है रेड क्रॉस, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करता है। जहां भी कोई कैलेमिटीज आती है वहां पहले पहले वर्कफोर्स रेड क्रॉस से पहुंचता है, वॉर सिचुएशंस में वो लोगों को हेल्प करता है। दूसरा है प्रथम, जो कि एक एनजीओ है जो स्पेसिफिकली इंडिया में एजुकेशन स्पेसिफिकली अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए, उसके लिए काफी अच्छा काम करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, जो कि स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। चौथा, जहां पर आप प्रेजेंटली है, ब्रह्मा कुमारी, जिसको तो आपने काफी करीब से ये तीन दिनों में देखा है। और पांचवा है लिनक्स। शायद जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं वो फेमिलियर होंगे, पर आज के जितने भी सर्वर ग्रेड सिस्टम्स है वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज करके अपना एक पेड प्रोडक्ट रखा है, वैसे लिनक्स ने पूरा एक ओपन सोर्स सिस्टम रखा कि पूरे विश्व के लिए उसको ओपन कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज के मेजॉरिटी जो सर्वर्स है वो सभी वो लिनक्स पे चलते हैं। तो वो लिनक्स फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर्स से चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या वैल्यू सीख सकते हैं? तो उसमें पहला है कि एक स्ट्रांग सेंस ऑफ पर्पस। चूंकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, तो उसमें जो भी कार्य करने वाले हैं वो सब भी, उनमें भी ये हमेशा मन में रहता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इस बड़े लक्ष्य के लिए। जैसे रेड क्रॉस में कोई कुछ भी मदद के लिए कार्य कर रहा है तो उनके मन में रहता है कि ये पूरे विश्व में जहां भी कैलेमिटीज है उसमें हेल्प करने के लिए ये हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे ही हम वाइल्ड लाइफ फेडरेशन में देखें तो उसका कोई भी वॉलंटियर है उसे पता है कि ये इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए मैं जो वर्क कर रहा हूं उसका एक रिजल्ट मिलने वाला है। तो उनमें ये जो सेंस ऑफ पर्पस है वो बहुत स्ट्रांग रहता है और ये सेम चीज कॉर्पोरेट्स में भी अप्लाई हो सकती है। सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि कोई भी काम बहुत छोटा नहीं होता। चाहे कोई वर्कर है जो रेडक्रॉस के लिए सामान अलग कर रहा है, चाहे आपने बिहाइंड द सीन्स यहाँ आपने ऑब्जर्व किया हो या नहीं, पर आपको जो भी भोजन प्राप्त हो रहा है या सुबह आप जब उठते हैं तो आपको गर्म पानी मिल रहा है, तो बिहाइंड द सीन्स काफी सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो बहुत अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये मन में रखते हुए कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल है और उनको चाहे लाइमलाइट मिले या ना मिले, परंतु वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को आगे बढ़ा रहा है। तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, ये जो माइंडसेट है ये भी कॉर्पोरेट्स को बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तीसरा, ऑफ कोर्स कोऑपरेशन और टीम वर्क। तो रेड क्रॉस का ही उदाहरण ले, तो जब वो वर्ल्ड वाइड ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें वो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स डालते हैं तो उसमें डॉक्टर्स का भी एफर्ट जाता है, लॉजिस्टिक्स टीम्स लगती है, काफी सारे ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स रहते हैं, तो ये सब पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं जिससे एक रिजल्ट एंड रिजल्ट मिलता है। वैसे ही जैसे ये वर्कशॉप का भी आपने एग्जांपल देखा, तो ये पूरा जो रिट्रीट प्लान किया तो उसमें भी कितने सारे अलग अलग बैकग्राउंड वाले वॉलंटियर्स एक साथ मिलके कोऑपरेशन और टीम वर्क से काम करते हैं, तब इतना बड़ा कार्य भी इजीली संपन्न होता है। तो तो ये सेम वैल्यू भी कोई भी वर्क प्लेस को भी बहुत बेनिफिट कर सकता है कि उसके एम्प्लॉयज एज अ टीम अच्छा काम कर. सिंसियरिटी ऑफ एफर्ट्स, चाहे कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका जो कार्य है वो आप पूरी ईमानदारी सिंसियरिटी से करें. तो इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग एग्जांपल्स है. जैसे प्रथम में कोई टीचर है या बच्चा है जो बहुत रिमोट एरिया में उसे कोई पढ़ा रहा है, अभी चाहे उसको कोई मॉनिटर नहीं भी कर रहा है पर फिर भी वो अपना पूरा एफर्ट अच्छे से लगा रहा है फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड. तो ये वैल्यू भी हमारे वर्क प्लेस में काफी बेनिफिशियल रहता. और लास्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. ये वैल्यू में आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रेड क्रॉस ड्रोन्स का यूज करता है, प्रथम टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ब्रह्मा कुमारीज में भी आपने देखा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है टू स्प्रेड एंशियंट मेडिटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ऐसे नई जो टेक्नोलॉजीज आती है उनको हम एडॉप्ट करेंगे तो भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रहेगा. सो दैट इज इट. यहाँ कुछ रेफरेंसेस है, बाकी मैंने पेपर में भी मेंशन किया है, तो यू कैन रीड थ्रू इट. थैंक यू.
बहुत बहुत शुक्रिया फलक भाई और हमारे तीनों पेपर प्रेजेंटर्स का. बहुत अच्छे से रिसर्च करके टू द पॉइंट बेहतरीन तरीके से आप सभी ने प्रेजेंट किया है. तो एक बार पुनः हम ताली बजा के तीनों का अभिनंदन करेंगे और हमारे जो जज है गुप्ता जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. जो स्कोर्स है कल वैलिडिक्ट्री सेशन में हम सुनेंगे. तो सेशन कंप्लीट करने से पहले एक मिनट हम सभी साइलेंस में बैठेंगे और फिर क्लोज करेंगे. ओम शांति. थैंक यू.